तीसरा सियाम के थाई राज। मंगोल आक्रमणों के कारण जब थाई लोग यूनान को छोड़कर अन्यत्र प्रवास के लिए विवश हुए तो उन्होंने सियाम में आकर वहां अपने अनेक राज्यों की स्थापना की। 1253 ईस्वी में उनके प्रमुख राज गांधार का पतन हुआ था और उसके बाद ही प्रवास की उस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ जिसके कारण सियाम ने थाईलैंड या थाई भूमि का रूप प्राप्त कर लिया। वस्तुतः सियाम नाम भी श्याम का रूपांतर है और थाई लोगों की एक शाखा उसी प्रकार से श्याम या सयाम कहती थी जैसे कि अन्य शाखाएं शान, अहोम आदि। सुखोदय या सुखातोई। सियाम के क्षेत्र में थाई लोगों ने जो अनेक राज्यों को स्थापित किया था उनमें सुखोदय सर्वप्रधान था। उसकी स्थापना इंद्रादित्य द्वारा की गई थी। सियाम पहले कंबुज के अधीन था और उसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार के दक्षिण में जो अनेक छोटे छोटे थाई राज्य थे उनकी स्थिति भी कंबुज राजा के अधीनस्थ सामंतों के सदृश थी। इंद्रादित्य भी इसी प्रकार का एक सामंत था पर वह अपनी इस स्थिति से संतुष्ट नहीं था। अवसर पाकर उसने कंबुज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। उसे वशवर्ती बनाने के लिए जो सेनाएं कंबुज के राजा द्वारा भेजी गईं वे इंद्रादित्य द्वारा परास्त कर दी गईं। इस प्रकार कंबुज के प्रभुत्व से मुक्त होकर इंद्रादित्य ने जिस स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया उसकी राजधानी सुखोथई या सुखोदय नगरी थी। इंद्रादित्य बड़ा प्रतापी राजा था। समीप के अनेक छोटे छोटे राज्यों को जीतकर उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी और श्री सूर्यफा महाराजा धर्माधिराज उपाधि से अपने को विभूषित किया था। इंद्रादित्य ने अपने शत्रुओं से जो युद्ध किए थे उनमें उसके पुत्र राम खमहेड़ ने प्रमुख भाग लिया था। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात 1283 ईस्वी में वह सुखोदय के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और अपने राज्य की उन्नति के लिए उसने अनेक कार्य किए। उसका एक महत्वपूर्ण कार्य सियामी भाषा के लिए नई लिपि का निर्माण कराना था। अपने एक अभिलेख में उसने इस बारे में लिखा है, पहले सियामी लिखने के लिए कोई अक्षर नहीं था। 1283 ईस्वी में अजवर्म के राजकुमार खुनराम खमहेड़ के मन में इच्छा हुई और उसने सियामी लिपि के अक्षर बनाए। राम ने यह नई लिपि कंबुज देश की लिपि के आधार पर बनाई थी। अनेक राज्यों को जीतकर उसने अपने राज्य की शक्ति में भी वृद्धि की थी। उसके एक अभिलेख में उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्हें जीतकर उसने अपने अधीन कर लिया था। इनमें कतिपय राज्य ऐसे भी हैं जिनकी स्थिति बर्मा और मलाया प्रायद्वीप में थी। संभव है कि राम खमेर की विजय यात्राओं के विवरणों में अतिशयोक्ति से काम लिया गया हो, पर इसमें संदेह नहीं कि वह एक प्रतापी राजा था और उसके शासन काल में सुखोदय राज्य का बहुत उत्कर्ष हुआ था। उसने अपनी राजधानी सुखोदय को विभूषित करने के लिए भी प्रयत्न किया था और वहां उसने अनेक विहारों का निर्माण कराया था। अपने अभिलेख में उसने सूचित किया है कि पश्चिम की ओर एक बनाराम है, राजा खुन राम खमेर ने उसे बनवाकर फा महास्थवीर को दे दिया। महास्थवीर नायक भिक्षु और थिनमान है। त्रिपिटक में पारंगत अपने संघ के मुखिया अपने देश के सभी आचार्यों के ऊपर है। वह सिद्ध ममरति श्री धर्मराष्ट्र से यहाँ आए हैं। वन वाले आराम के बीच में एक मंदिर भवन है जो बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा और अत्यंत सुंदर है। उसमें 18 हाथी ऊंची एक खड़ी मूर्ति है। न्याय को सुलभ बनाने के लिए राम ने एक घंटी टंगवा दी थी जिसे बजाकर कोई भी व्यक्ति उसके पास पहुंच सकता था और उससे न्याय की याचना कर सकता था। राम का पुत्र श्री धर्मराज था जो अपने पिता के जीवन काल में फ्रा महा उपराज के पद पर नियुक्त था। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि पिता के बीमार पड़ने पर सामंतों ने उसे पदच्युत करने का प्रयत्न किया, पर वे सफल नहीं हो सके। 1355 ईस्वी में उसने राजसिंहासन प्राप्त किया और फ्राह पाद कामरात न श्री सूर्यवंश राम महाधर्मराज धीराज की उपाधि ग्रहण की। यद्यपि वह स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, पर पौराणिक हिंदू धर्म पर भी उसकी श्रद्धा थी। इसीलिए उसने शिव और विष्णु की मूर्तियों को भी प्रतिष्ठापित कराया था। पौधों के लिए तो उसने अनेक विहार तथा चैत बनवाए ही थे। 1357 ईस्वी में उसने खम फेन फेत नगरजम में श्री रत्न महाधातु को प्रतिष्ठा के लिए एक विहार का निर्माण कराया था और वह इसी विहार में रहने लगा था। वह स्वयं भी जनता में बौद्ध धर्म का प्रचार किया करता था। धर्म प्रचार की लगन में उसने अनुभव किया कि शुद्ध बौद्ध धर्म सिंघल में है, अतः वहां किसी धर्माचार्य को आमंत्रित कर अपने देश के धर्म में सुधार करना उपयोगी होगा। इसीलिए 1362 ईस्वी में महास्वामी संघराज को सिंघल से लाने के लिए उसने सुखोदय से राज पंडित को भेजा। संघराज के सियाम पधारने पर उनका धूमधाम से स्वागत किया गया और राजा ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मैं चक्रवर्ती संपत्ति, इंद्र संपत्ति एवं ब्रह्मा की संपत्ति नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ बुद्ध होना, जिससे भव सागर में निमग्न होते हुए प्राणियों की सहायता कर सकूं। फिर राजा ने भिक्षु व्रत ग्रहण कर लिया। बुद्धत्व प्राप्त करने की धुन से राजा श्री धर्मराज ने राजकीय कर्तव्य की उपेक्षा शुरू कर दी, जिसके कारण राज्य में अव्यवस्था प्रादुर्भूत होने लगी। जब यह बात महास्वामी संघराज ने सुनी तो उसने राजा को शासन कार्य संभालने का आदेश दिया, जिससे राज्य में पुनः व्यवस्था स्थापित हुई। पर राजा धर्मराज की वृत्ति के कारण सर्योदय राज्य को जो क्षति पहुंची थी, उसकी पूर्ति हो सकना संभव नहीं हुआ और उसकी शक्ति का ह्रास हो गया। अयोध्या का उत्कर्ष। सियाम में सुवनपुनी या उतोंग नाम का एक अन्य थाई राज्य था, जो सर्वोदय के अधीन था। श्री धर्मराज के बौद्ध धर्म के प्रति अगाध अनुराग के कारण जब सुखोदय के शासन में शिथिलता आने लगी तो उतोंग को अपनी शक्ति में वृद्धि करने का अवसर हाथ लग गया और उसने सुखोदय राज्य को कुछ प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। 1350 ईस्वी में वहां के राजा ने अयोध्या अयुथिया नाम के एक नए राज नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बना लिया। सुखोदय के विरुद्ध विद्रोह कर इस राजा ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और रामाधिपति नाम से शासन करना प्रारंभ कर दिया। रामाधिपति एक प्रतापी और महात्मा कांक्षी राजा था। उसके नेतृत्व में अयोध्या के राज्य ने बहुत उन्नति की और वह सियाम का प्रमुख थाई राज्य बन गया। सुखोदय के राजाओं को उसने अधीनस्थ होकर रहने के लिए विवश किया और बाद में तो उनकी स्थिति प्रांतीय शासकों के समान रह गई। अयोध्या के राजा केवल सियाम के विरुद्ध विविध राज्यों को ही अपना वशवर्ती बनाकर संतुष्ट नहीं हो गए, उन्होंने पूर्व की ओर विद्यमान लाओस को भी जीत कर लिया और फिर कंबोडिया कंबुज पर आक्रमण कर उसके भी कुछ प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। पर पश्चिम की ओर बर्मा की विजय करने में अयोध्या के राजाओं को सफलता नहीं हुई। लाओस और कंबोडिया पर भी उनका आधिपत्य स्थायी नहीं रहा। पर इसमें संदेह नहीं कि अयोध्या को राजधानी बनाकर रामाधिपति के उत्तराधिकारी संपूर्ण श्याम पर शासन करते रहे और अवसर पाकर समीप के अन्य राज्यों को भी अपना वशवर्ती बनाने में तत्पर रहे। अयोध्या के राजाओं के लिए सबसे विकट समस्या बर्मी आक्रमणों की थी, जिनसे उन्हें सदा आशंकित रहना पड़ता था। बर्मा के एक आक्रमण के कारण ही 1700 67 ईस्वी में अयोध्या नगरी ध्वस्त हो गई, जिसके कारण बैंकॉक को सियाम की नई राजधानी बनाया गया। वर्तमान समय में बैंकॉक ही उसकी राजधानी है। अयोध्या के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। राजा परम राजाधिराज 1417 से 37 के समय में सियाम में उसी प्रकार बुद्ध पद की स्थापना हुई जैसे कि गया में विष्णु पद और कंबुज में शिव पद थे। अयोध्या के बौद्ध राजाओं ने बहुत से विहारों, चैत्यों तथा स्तूपों का सियाम में निर्माण कराया, जिनकी वास्तुकला पर भारतीय कला की छाप स्पष्ट रूप से विद्यमान है। यद्यपि सियाम के राजा और प्रजा दोनों बौद्ध थे, पर साथ ही पौराणिक हिंदू धर्म की भी वहां सत्ता थी। पौराणिक देवी देवताओं के बहुत से मंदिर भी वहां थे और उनमें ब्राह्मण पुजारी आदि भी रहा करते थे। अब तक भी कुछ ब्राह्मण वहां रहते हैं जो राजाओं के अभिषेक तथा अन्य धार्मिक कृत्यों में पौरोहित करते हैं। सियाम में ब्राह्मण शब्द बिगड़कर फार्म हो गया है। बैंकॉक में एक हिंदू मंदिर व तोत फार्म इस समय भी है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति की विशाल प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित हैं। सियाम की भाषा पर भी भारत का प्रभाव है। उसके बहुत से शब्द संस्कृत और पाली से लिए गए हैं। वहाँ मंत्री को मंत्री, अमात्य को अमंच, पुरोहित को परोहित, पटरानी को अग्रमहिषी, को अख महेशी और घोड़े को अश्व को अशुसव कहा जाता है। इसी प्रकार के सैकड़ों शब्द हैं जो सियामी भाषा में संस्कृत तथा पाली से लिए गए हैं। बर्मा और श्रीलंका के समान सियाम में भी बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति की परंपरा सुदृढ़ रूप से विद्यमान है और भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का वहाँ से अंत नहीं हुआ है।